बी मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज, नई तथा पुरानी दुनिया के सभी महाद्वीपों में मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र स्थित हैं। विश्व के उन भागों में जहाँ प्राकृतिक तथा मानवीय दशाएं अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उपयुक्त नहीं हैं, किंतु वे मानव निवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त भी हैं। ऐसे क्षेत्रों में कहीं कहीं भौगोलिक दशाएं मानव निवास के लिए उपयुक्त भी हैं, लेकिन इनका विस्तार अपेक्षाकृत कम है। एशिया में भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित टर्की, इजराइल, जॉर्डन और लेबनान में जनसंख्या का वितरण मध्यम प्रकार का है। दक्षिण पूर्वी यूरोप में रूम सागर के तटवर्ती देशों में जनसंख्या अधिक सघन नहीं है। इन देशों में कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अधिकांश भूमि पहाड़ी और पठारी है। ग्रीष्मकाल शुष्क रहने के कारण खेती अधिकतर शीत ऋतु में ही होती है। रूम सागरी जलवायु वाले इन भागों में मुख्यतः रसदार फलों की खेती की जाती है। यहाँ बड़े उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ है और उद्योग के नाम पर छोटे छोटे धंधे ही पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी यूरोप में भी जनसंख्या का वितरण सामान्य ही कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत यूक्रेन और रूस के भाग सम्मिलित हैं, जहाँ कृषि और उद्योग दोनों का पर्याप्त विकास हुआ है। उत्तरी अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग, जो मुख्यतः कृषि प्रदेश है, मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ बड़े बड़े कृषि फार्मों पर आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से उन्नत कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या कम होते हुए भी कृषि उन्नत अवस्था में है। यहाँ गेहूं, मक्का, कपास आदि की विकसित कृषि उन्नत अवस्था में है। पाई जाती हैं। इन भागों में दूर दूर कृषि फार्मों पर कृषि गृह, फार्म स्टेट के रूप में प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तट पर भी नगरों के विकास से जनसंख्या का जमाव बढ़ा है। इसके अतिरिक्त मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह भी मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण अमेरिका में पूर्वी तथा पश्चिम समुद्रतटीय भागों में जनसंख्या का वितरण सामान्य है। ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू तथा चिली के समुद्रतटीय भाग इसी प्रकार के हैं। अफ्रीका में नील नदी की घाटी, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, मोरक्को तथा अल्जीरिया, पश्चिमी अफ्रीका के तटवर्ती भाग गिनी और नाइजीरिया, और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में भी जनसंख्या का वितरण न अधिक है और न ही इसे कम कहा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग में ही अधिकांश जनसंख्या का निवास है, जिसकी सघनता मध्यम प्रकार की है। न्यूजीलैंड की गणना भी इसी श्रेणी के अंतर्गत की जा सकती है। सी अल्प तथा अति अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र, लो एंड वेरी लो पॉपुलेटेड एरियाज। इसके अंतर्गत विश्व के बसे हुए उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहाँ जनसंख्या का बसाव बहुत कम है और यह यत्र तत्र बिखरे समूहों में पाई जाती है, किंतु ये क्षेत्र पूर्णतया जनरिक्त नहीं है। इन क्षेत्रों में भूविन्यास, जलवायु, मिट्टी, जलापूर्ति आदि का अनुपयुक्त होना और आर्थिक संसाधनों, यातायात के साधनों आदि का अभाव जनसंख्या वृद्धि तथा सघनता में अवरोधक है। इस प्रकार के क्षेत्र सामान्यतः मरुस्थलों, भूमध्य रेखी घने जंगली भागों के बाहर स्थित सीमांत क्षेत्रों, कटे फटे पठारों तथा निचले पहाड़ी प्रदेशों, कनाडा तथा यूरेशिया के टैगा वन प्रदेशों में मिलते हैं। एशिया में पश्चिमी चीन, तिब्बत, मंगोलिया तथा एशियाई रूस के विस्तृत भूभाग में अल्प जनसंख्या का निवास पाया जाता है। डी, निर्जन प्राय या बिना बसे हुए क्षेत्र, नॉन एक्यूमिन एरियाज। पृथ्वी का लगभग आधा स्थलीय क्षेत्र पूर्णतः अथवा लगभग जनरिक्त है, जहां अस्थायी मानव निवास का अभाव है। ऐसे क्षेत्र अत्यंत शीतल अथवा अत्यंत उष्ण तापमान, अत्यधिक वर्षा अथवा अति शुष्कता तथा धरातली विषमता के कारण मानव निवास के लिए सर्वथा प्रतिकूल हैं, जिसके कारण यहाँ अस्थायी मानव निवास अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इन क्षेत्रों में मानव बसाव के अभाव के लिए जलवायु की कठोरता ही सर्वाधिक उत्तरदायी है। विश्व के बिना बसे हुए प्रदेश अति प्रधान हैं, जिन्हें निम्नलिखित चार वर्गों में रखा जा सकता है, अति शीत प्रदेश, अति शुष्क प्रदेश, अति उष्णाद्र प्रदेश, अति ऊंचे पर्वतीय प्रदेश। पहला, अति शीत प्रदेश, वेरी कोल्ड रीजन्स। उत्तरी गोलार्ध में टुंड्रा प्रदेश और दक्षिणी गोलार्ध में संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप वर्ष पर्यंत हिमाच्छादित रहने के कारण पूर्णतया निर्जन या जनरिक्त है। शीत प्रधान टुंड्रा का विस्तार अलास्का से लेकर उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी स्कैंडिनेविया तथा उत्तरी साइबेरिया तक है। यह समस्त भाग जनरिक्त है और टुंड्रा के केवल दक्षिणी सीमा पर, विशेषकर सागर तटीय भागों में यत्र तत्र शिकारी आदिम जाति के कुछ लोग पाए जाते हैं, जो शिकार की खोज में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। कनाडा और ग्रीनलैंड के समुद्र तटीय भागों में एस्किमो नामक घुमक्कड़ शिकारी मिलते हैं, जो मछलियों तथा अन्य जीवों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश में याकूत, चुकची आदि आदिम जातियों के लोग यत्र तत्र समुद्री तटों पर मिलते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसका क्षेत्रफल लगभग 135 लाख वर्ग किलोमीटर है, अस्थायी हिमावरण के कारण पूर्णतया जनविहीन है। दूसरा, अति शुष्क प्रदेश, वेरी ड्राई रीजन। वर्षा तथा जलाभाव के कारण पृथ्वी के कई बड़े बड़े प्रदेश निर्जन पड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत निम्न तथा मध्य अक्षांशों में स्थित मरुस्थल सम्मिलित हैं। अफ्रीका में सहारा और कालाहारी मरुस्थल, एशिया में अरब, थार, तुर्किस्तान, गोबी और तकलामकांडे मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन, दक्षिणी अमेरिका में पेटागोनिया एवं अटाकामा मरुस्थल और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल संसार के बहुत बड़े बड़े शुष्क प्रदेश हैं, जहां वर्षा और जल के अभाव के कारण वनस्पतियों का विकास नहीं हो पाता है और संपूर्ण भाग रेत अथवा नग्न शैलों से आच्छादित रहता है। इन मरुस्थलों में भयंकर रेत भरी आंधियां चलती हैं। इन मरुस्थलों में कहीं कहीं जहां जलाशय पाए जाते हैं उनके किनारे किनारे ही हरियाली देखी जा सकती है। इन मरुद्यानों में लघु मानव समूह अस्थायी निवास बनाकर तब तक रहता है जब तक जलाशय में जल उपलब्ध रहता है। भविष्य में कृत्रिम वर्षा अथवा सिंचाई के साधनों के प्रयोग से मरुस्थलों में जनसंख्या निवास के क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, अति उष्णाद्र प्रदेश, वेरी हॉट ह्यूमिड रीजन। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में तापमान वर्ष भर उच्च रहता है और वर्षा अधिक मात्रा में होती है, जिसके फलस्वरूप वहां सघन वनस्पतियां खूब पनपती हैं तथा ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले सघन वन पाए जाते हैं। वृक्षों के नीचे तरह तरह की झाड़ियां तथा अन्य वनस्पतियां उगती हैं, जिससे जंगली भाग प्रायः अंधकारमय और दुर्गम होते हैं। इन वनों में अनेक प्रकार के जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियां आदि अधिक पनपते हैं, जो मनुष्यों के लिए घातक होते हैं। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के इस प्रदेश में हवा प्रायः स्थिर रहती है अथवा अत्यंत मंद गति से चलती है, जिसके कारण वातावरण उमस भरा होता है और हमेशा पसीना होता रहता है। इस प्रकार के भूमध्य रेखीय जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए अहितकर है और वहां प्रायः बीमारियां तथा महामारियों का प्रकोप बना रहता है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन, ब्राजील और अफ्रीका के कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीका के सघन वन प्रदेश लगभग जनरिक्त हैं। इन जंगलों में आदिम जातियों के कुछ समूह मिलते हैं जो पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं। ये लोग जंगली जानवरों के शिकार तथा पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। चौथा, उच्च पर्वतीय प्रदेश, हाई माउंटेन्स रीजन। ऊंचे पर्वतों के ऊपरी भाग विषम धरातल, तीव्र ढाल और प्रतिकूल पर्यावरण के कारण प्रायः जनविहीन होते हैं। उच्च पर्वतीय भागों में भोजन का अभाव, शीतल एवं अहितकर जलवायु तथा आवागमन की असुविधा ही जनरिक्तता की प्रमुख कारण है। ऊंचे पर्वतीय भाग अत्यंत न्यून तापमान के कारण प्रायः हिमच्छादित रहते हैं। यहाँ समतल भूमि के अभाव और तीव्र ढाल के कारण बस्तियां बनाना अत्यंत कठिन ही नहीं, कहीं कहीं लगभग असंभव होता है। पर्वतीय भागों में कुछ गिनी चुनी घाटियों के अतिरिक्त संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र कृषि के लिए अयोग्य होता है। एशिया में हिमालय, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज तथा यूरोप में आल्पस पर्वत के अधिकांश उच्चवर्ती भाग पूर्णतः जनविहीन है। उष्णकटिबंधीय पर्वतों की जलवायु प्रायः स्वास्थ्यवर्धक होती है, अतः वहां पर्यटन तथा मनोरंजन केंद्र के रूप में कुछ स्थलों पर मानव निवास पाया जाता है। इसके विपरीत मध्य एवं उच्च अक्षांशीय पर्वतों की जलवायु अति शीतल और कठोर होती है, जिसके कारण ऐसे भूक्षेत्र सामान्यतः जनरिक्त रहते हैं। महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का प्रतिरूप, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट्स। जनसंख्या आकार के अनुसार एशिया विश्व का बृहत्तम महाद्वीप है, जहां विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इसके पश्चात यूरोप 13% और अफ्रीका 12% का स्थान है। जनसंख्या के अनुसार उत्तरी अमेरिका का चौथा, दक्षिणी अमेरिका का पांचवा और ऑस्ट्रेलिया का छठा स्थान है। एशिया में जनसंख्या वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन एशिया। एशिया संसार का बृहत्तम महाद्वीप है जो विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल के लगभग एक तिहाई भाग को घेरे हुए है। जनसंख्या की दृष्टि से यह और भी बड़ा महाद्वीप है क्योंकि यहाँ विश्व की लगभग 60% 371 करोड़ जनसंख्या एशिया में निवास करती है। एशिया विविधताओं का महाद्वीप है जिसके विभिन्न भागों की स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, जल संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति आदि प्राकृतिक दशाओं में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है, जिसके प्रभाव यातायात के साधनों, कृषि, उद्योग धंधों आदि के विकास पर पड़ा है। इन क्षेत्रीय भिन्नताओं के परिणाम स्वरूप पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में अधिक जनसंख्या संकेंद्रित है, जबकि अनेक अभावग्रस्त रेगिस्तानी, जंगली तथा पहाड़ी भाग या तो अति अल्प जनसंख्या वाले हैं या निर्जन प्राय हैं। जनसंख्या के सामान्य वितरण प्रतिरूप और सघनता के अनुसार एशिया महाद्वीप को तीन बृहत श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। एशिया का मानसूनी जलवायु वाला भाग विश्व का सबसे सघन और अधिक जनसंख्या वाला भूभाग है, जिसमें अधिक जनसंख्या के दो स्पष्ट क्षेत्र हैं। ए, पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान, ताइवान और कोरिया देश आते हैं, तथा बी, दक्षिणी एशिया, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका सम्मिलित है। इन दो बड़े जनसमूहों के मध्य दक्षिण पूर्वी एशिया में भी जनसंख्या अधिक है, किंतु इसका आकार उपर्युक्त दोनों महाजनसमूहों की तुलना में छोटा है। जापान को छोड़कर मानसून एशिया के सभी देश कृषि प्रधान हैं, अतः सर्वाधिक जनसंख्या उन भागों में पाई जाती है जो पर्याप्त वर्षा, समतल भूमि और उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। पिछले 3-4 दशकों से नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या के संकेंद्रण की प्रवृत्ति अधिक बलवती होती जा रही है। चीन, भारत, बांग्लादेश सहित अन्य देशों में भी 3/4 से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है, जहां बेरोजगारी और निर्धनता की समस्याएं अधिक व्यापक हैं। एशिया के अधिक जनसंख्या वाले देश निम्नलिखित हैं। चीन, संसार की समस्त जनसंख्या का लगभग 1/4 पूर्वी एशिया में पाया जाता है, जिसमें चीन बृहत्तम देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन एशिया का ही नहीं अपितु विश्व का बृहत्तम देश है, जहां एशिया की लगभग 35% और विश्व की 20% से अधिक जनसंख्या का निवास है। चीन की जनसंख्या लगभग 128.5 करोड़ 2001 में है। चीन में धरातली विषमता के कारण जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान और अधिकांश जनसंख्या इसके दक्षिण पूर्वी भाग में संकेंद्रित है जो समतल और उपजाऊ है। चीन का विशाल मैदान जेजवान बेसिन, यांगटसिकियांग बेसिन, सीकियांग बेसिन तथा समुद्रतटीय मैदान अधिक सघन बसे हुए भाग हैं। चीन की 2/3 से अधिक जनसंख्या इसी भाग में रहती है। समतल धरातल, जलोढ़ तथा लोयस की उपजाऊ मिट्टी और आर्द्र मानसूनी जलवायु के परिणाम स्वरूप प्राचीन काल से ही यहाँ कृषि कार्य होता आ रहा है। चीन, वीहो घाटी प्राचीन मानव सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात चीन में औद्योगीकरण की अनेक बड़े औद्योगीकरण की प्रवृत्ति तीव्र हो गई और आज चीन की गणना संसार के बड़े औद्योगिक देशों में होने लगी है। आज यहाँ अनेक बड़े बड़े औद्योगिक नगर विकसित हैं, जिनमें शंघाई, कैंटन, नानकिंग, हैंकाऊ, बीजिंग, टियानसिन आदि प्रमुख हैं। उल्लेखनीय औद्योगिकरण के बावजूद चीन की लगभग 70% जनसंख्या कृषि में संलग्न है और मुख्यतः पूंजित ग्रामों में निवास करती है। चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में जनसंख्या का औसत घनत्व 1000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है से अधिक है। उत्तरी पश्चिमी चीन का धरातल पहाड़ी पठारी होने के कारण वहां जनसंख्या का निवास बहुत कम है। पिछले कुछ दशकों में चीन में जनसंख्या की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है। यहाँ परिवार नियोजन की कठोरता से पालन किए जाने से जन्म दर अन्य देशों की तुलना में शीघ्रता से घटी है, किंतु जन्म दर अभी मृत्यु दर से अधिक है। इस प्रकार चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में ह्रास की प्रवृत्ति है। जापान की वर्तमान जनसंख्या लगभग 12.73 करोड़ है। एशिया में जापान ही एकमात्र देश है जिसकी गणना विश्व के विकसित तथा प्रमुख औद्योगिक देशों में होती है। जापान की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने के कारण मात्र 16% भूमि पर ही कृषि होती है। यहाँ गहन कृषि द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, किंतु वह देशों की आवश्यकता से बहुत कम है। जापानी लोगों की जीविका का मुख्य आधार औद्योगिक उत्पादन है, जो उच्च कोटि के और अपेक्षाकृत सस्ते हैं, जिसके कारण विश्व बाजार में उनकी अधिक मांग है। जापान के अधिकांश बड़े औद्योगिक केंद्रों का विकास समुद्र तटीय मैदानों में हुआ है, जहां मध्यवर्ती पहाड़ी भागों में स्थित जल विद्युत केंद्रों से विद्युत की आपूर्ति की जाती है। जापानी उद्योग अधिकतर विदेशों से आयातित कच्चे मालों पर आधारित है। लोहा इस्पात, जलयान, वायुयान, मोटरकार, वस्त्र जैसे बड़े उद्योगों के अतिरिक्त जापान में विविध प्रकार के उद्योग धंधे घरेलू तथा लघु उद्योगों के रूप में संचालित होते हैं। जापान की अधिकांश जनसंख्या इसकी औद्योगिक पेटी में पाई जाती है और नगरों में निवास करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जापान का पर्याप्त औद्योगिक विकास हो चुका था। इस युद्ध में जापान के कारखाने काफी सीमा तक नष्ट हो गए थे, किंतु इसके पश्चात जापानियों की लगन एवं तत्परता, कार्यकुशलता और कर्मठता के फलस्वरूप अगले दो दशकों में ही जापान ने इतनी प्रगति कर ली कि वह विकसित और औद्योगिक देशों की श्रेणी में आ गया। जापान में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत निम्न, 10 प्रति हजार से कम है और जनसंख्या लगभग अस्थाई हो गई है। भारत, यह विश्व में चीन के पश्चात बृहत्तम जनसंख्या वाला देश है। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 102.7 करोड़ है, जिसमें से अधिकतर नदी घाटियों के उपजाऊ बेसिनों में निवास करती है। जनसंख्या के वितरण पर वर्षा की मात्रा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की पर्याप्त मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। इसी के अनुकूल जनसंख्या की सघनता भी बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि वर्षा की मात्रा से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है और अधिक वर्षा से भूमि में अधिक खाद्यान्न उत्पादन द्वारा अधिक मनुष्यों के पोषण की क्षमता प्राप्त होती है। भारत का उत्तरी मैदान विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों में से एक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान तथा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के डेल्टाई भागों में भी जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक हुआ है। दक्षिणी पठार पर जनसंख्या की सघनता मैदानों की तुलना में काफी कम है, किंतु उसके उत्तरी पश्चिमी भाग में जहां उपजाऊ काली मिट्टी का विस्तार है, जनसंख्या वितरण सामान्य है। उत्तर में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र कम जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। कुछ घाटियों को छोड़कर अधिकांश हिमालय क्षेत्र लगभग निर्जन है। भारत में जनसंख्या की सघनता सतलज तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मैदानी भागों में अधिक पाई जाती है। जनसंख्या की सर्वाधिक सघनता गंगा के निचले मैदान में पाई जाती है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, किंतु पश्चिम बंगाल 904, केरल 819, बिहार 880, उत्तर प्रदेश 689, तमिलनाडु 488, पंजाब 482, हरियाणा 477 में यह 400 से अधिक 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश 13, मिजोरम 42, अंडमान एवं निकोबार 43, सिक्किम 76 और जम्मू एवं कश्मीर 99 जैसी पहाड़ी राज्यों में जनसंख्या का घनत्व लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देशों में नियोजित विकास के अंतर्गत कृषि के साथ ही उद्योग के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यहाँ अनेक नए नगरों तथा औद्योगिक केंद्रों के विकास के साथ ही पहले के नगरों का काफी विकास हुआ है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होते हुए भी भारत ने पर्याप्त औद्योगिक प्रगति की है। आज 1/4 से अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है। भारत एक विकासशील देश है जहां निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि की समस्या अभी भी जटिल तथा व्यापक है। भारत जनसंख्या संक्रमण की विस्फोटक अवस्था में है। यहां मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी 9 व्यक्ति प्रति हजार आ गई है, किंतु जन्म दर में मामूली गिरावट के पश्चात भी अभी भी यह उच्च लगभग 28 व्यक्ति प्रति हजार है। दोनों दरों में भारी अंतर के कारण जनसंख्या प्रति वर्ष तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश। भारत से संलग्न बांग्लादेश की कुल जनसंख्या 14.09 करोड़ से अधिक है। जिसकी लगभग 90% नदी निर्मित जलोढ़ मैदानी तथा डेल्टाई भागों में पाई जाती है। अधिक वर्षा और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले इस देश में चावल प्रधान कृषि उपज है, जिसमें अन्य खाद्यान्नों की तुलना में पोषण क्षमता अधिक होती है। गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। बांग्लादेश की 80% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है और कृषि कार्यों में संलग्न है। यहाँ मछली पकड़ने के काम में भी काफी लोग लगे हुए हैं। यहाँ बड़े उद्योग धंधों का विकास बहुत कम हुआ है और ढाका तथा मैमनसिंह के औद्योगिक केंद्रों का अभाव है। भारत की भांति बांग्लादेश में भी मृत्यु दर काफी घट गई है, किंतु जन्म दर अभी उच्च है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि उच्च है और देश जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहा है। दूसरा, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जनसंख्या का वितरण मध्यम प्रकार का है। पश्चिमी एशिया में टर्की, इजराइल, जॉर्डन आदि देशों में वर्षा की कमी तथा भूमि के कम उपजाऊ होने के कारण अधिक लोगों के भरण पोषण की क्षमता नहीं है और औद्योगिकरण का भी लगभग अभाव है। दक्षिण पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में जनसंख्या अधिकतर नदी घाटियों में रहती है, जिसका क्षेत्रफल बहुत सीमित है। अधिकांश भाग पहाड़ी पठारी होने के कारण कृषि योग्य नहीं है और अधिक जनसंख्या के पोषण के लिए सक्षम नहीं है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान में भी जनसंख्या का वितरण मध्यम प्रकार का है और अधिकांश जनसंख्या सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में पाई जाती है। पाकिस्तान का उत्तरी पश्चिमी भाग पहाड़ी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग मरुस्थली होने के कारण कृषि और जनसंख्या निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ कृषि के साथ ही औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, अतः इस प्रदेश में जनसंख्या का वितरण पूर्वी भागों की तुलना में अधिक है। तीसरा, अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के शुष्क प्रदेशों में जनसंख्या निवास बहुत कम है। इन प्रदेशों में केवल नदी घाटियों तथा अन्य जलाशयों के निकट जहां सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है, थोड़ी जनसंख्या मिलती है। तेल उत्पादक केंद्रों के निकट नगरों का विकास हुआ है। अरब, थार, तुर्किस्तान आदि मरुस्थलों के मध्य मरुउद्यानों में थोड़ी जनसंख्या का निवास मिलता है। केवल दक्षिण पश्चिमी इस भाग को छोड़कर शेष एशियाई रूस में जनसंख्या का निवास अति अल्प है। एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित पहाड़ी प्रदेश इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अनेक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जनविहीन भी हैं। बी, यूरोप में जनसंख्या का वितरण। रूस सहित यूरोप की जनसंख्या लगभग 75 करोड़ है। उत्तरी यूरोप तथा दक्षिणी यूरोप में जनसंख्या कम है और अधिकांश जनसंख्या पश्चिमी और मध्यवर्ती भागों में पाई जाती है। यूरोप में जनसंख्या वितरण के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रकार के क्षेत्र हैं। पहला, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या इसकी मुख्य औद्योगिक पेटी में पाई जाती है, जिसका विस्तार पश्चिम में ग्रेट ब्रिटेन से लेकर पूर्व में रूस की वोल्गा नदी तक है। यह यूरोप की कोयला पेटी भी है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपीय कोयला पेटी का प्रधान अक्ष है, जिसके दोनों ओर उत्तम किस्म के कोयले के प्रचुर भंडार हैं। कोयले से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के आधार पर ही इस औद्योगिक पेटी का विकास हुआ है। यूरोप में जनसंख्या की सघनता 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अधिक है, और सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक सघनता 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अतः इसे यूरोपीय जनसंख्या की धुरी पाइवोट ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन भी कहा जाता है। सघन जनसंख्या की इस पेटी का विस्तार पश्चिम में अधिक और यह पूर्व की ओर सक्रिय होती गई है। इसमें सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर जनसंख्या का घनत्व भी कम होता गया है। अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी पश्चिमी तथा मध्यवर्ती यूरोप के अंतर्गत जर्मनी 8.23 करोड़, यूनाइटेड किंगडम 5.89 करोड़, फ्रांस 5.96 करोड़, यूक्रेन 4.93 करोड़, स्पेन 4 करोड़, पोलैंड 3.87 करोड़, रोमानिया 2.24 करोड़, नीदरलैंड 1.6 करोड़, चेक गणराज्य, बेल्जियम, हंगरी प्रत्येक 1 करोड़ आदि देश सम्मिलित हैं। इन देशों की स्थिति समुद्र के निकट है और आंतरिक क्षेत्र में भी रेल मार्ग, सड़क मार्ग और नहरों तथा नदियों के जलमार्गों द्वारा समुद्र पत्तनों से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यहाँ अनेक समुद्र पत्तन स्थित हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप की समशीतोष्ण जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। इन देशों में उद्योगों के लिए शक्ति के साधन के रूप में उच्च कोटि का कोयला और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में लोहा, पोटाश, मैग्नीज आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यूरोप में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र एशिया की भांति एक दूसरे से पृथक पृथक नहीं है, बल्कि परस्पर मिले हुए हैं और सतत रूप में फैले हुए हैं। फिर भी अधिक जनसंख्या के कुछ क्षेत्र अधिक स्पष्ट हैं। ग्रेट ब्रिटेन के कोयला क्षेत्रों में उद्योगों का खूब विकास हुआ है और 90% से अधिक जनसंख्या उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि द्वितीयक तथा तृतीयक कार्यों में लगी हुई है और नगरों में रहती है। ब्रिटेन की मात्र 8% जनसंख्या ही कृषि आदि प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। ब्रिटेन में लंकाशायर, यॉर्कशायर, मिडलैंड, नॉर्थम्बर, डरहम तथा निचला स्कॉटलैंड प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं और इन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण भी हुआ है। केवल लंदन क्षेत्र ही कोयला क्षेत्र से बाहर स्थित है। लंदन विश्व का एक महान नगर और विशाल औद्योगिक केंद्र है। यहाँ ऐसे उद्योग विकसित हैं जिनमें शक्ति का प्रयोग कम तथा कुशल मानव श्रम और आधुनिक यंत्रों का प्रयोग अधिक होता है। लंदन एक बड़ा समुद्र पत्तन है और साथ ही यह ग्रेट ब्रिटेन की आर्थिक तथा राजनीतिक राजधानी भी है। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, चेक गणराज्य और पोलैंड की अधिकांश जनसंख्या नगरों में रहती है और आर्थिक रूप से उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि क्रियाओं में संलग्न है। इन देशों के औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः कोयला पेटी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीनों, मोटर गाड़ियों आदि के उद्योग अधिक हैं। इस प्रदेश के औद्योगिक नगर सामान्यतः अधिक बड़े नहीं हैं। जर्मनी का रूर बेसिन यूरोपीय औद्योगिक पेटी के मध्य स्थित है, जहां लोहा इस्पात उद्योग के अतिरिक्त भारी इंजीनियरिंग, रेल इंजन, मोटर कार, मशीनें, कृषि यंत्र आदि बनाने के बड़े बड़े कारखाने हैं। यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण मुख्यतः औद्योगिक नगरों में हुआ है। डॉर्टमंड, डुसेलडॉर्फ और डुइसबर्ग जर्मनी के बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। यूरोप की प्रमुख औद्योगिक पेटी के पूर्वी भाग में यूक्रेन देश स्थित है, जहाँ उद्योग और कृषि दोनों का उल्लेखनीय विकास हुआ है। यहाँ लोहा और कोयला दोनों की उपलब्धता के आधार पर लौह इस्पात उद्योग का विकास कई केंद्रों पर हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ भारी इंजीनियरिंग और कृषि यंत्र आदि बनाने के कारखाने भी हैं। यूक्रेन उपजाऊ मिट्टी वाले समतल मैदानी प्रदेश है, जो गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ जनसंख्या का वितरण नगरों और ग्रामों दोनों में है। यद्यपि नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक है, यूरोपीय रूस के पश्चिमी भाग में जनसंख्या की सघनता पूर्वी भाग की तुलना में अधिक है। इस प्रदेश में कृषि और उद्योग दोनों का विकास हुआ है। कृषि उत्पादन में गेहूं का स्थान सर्वोपरि है। रूस में कोयला, लोहा तथा अन्य खनिजों पर आधारित कई बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। इस प्रदेश में वस्त्र तथा रसायन उद्योग भी विकसित है। रूस की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है, किंतु कृषि क्षेत्रों में ग्रामों की भी संख्या अधिक है। दूसरा, अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। यूरोप के दक्षिण भाग में भूमध्य सागर से संलग्न क्षेत्रों में अधिकतर जनसंख्या का निवास नदी घाटियों तथा डेल्टाई भागों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या का मुख्य आर्थिक आधार कृषि है। केवल इटली को छोड़कर अन्य देशों में आधुनिक उद्योग धंधों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। जनसंख्या ग्रामीण और नगरी दोनों क्षेत्रों में रहती है और नगर अपेक्षाकृत लघु आकार के हैं। गेहूं, मोटे अनाज और रसदार फलों की कृषि और पशुपालन यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय हैं। उत्तरी इटली की पो नदी घाटी में जनसंख्या अन्य क्षेत्रों से सघन है, क्योंकि यहाँ कृषि के अतिरिक्त उल्लेखनीय औद्योगिक विकास भी हुआ है। स्पेन और पुर्तगाल के तटीय भाग में जनसंख्या आंतरिक भाग की तुलना में अधिक है। तीसरा, अति अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र। यूरोप के अति शीतल, पर्वतीय, दलदली और मरुस्थली भागों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। अति शीतल जलवायु तथा ऊंचे नीचे पहाड़ी धरातल के कारण नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड में बहुत कम जनसंख्या का निवास है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं है। जनसंख्या लघु आकार के नगरों और ग्रामों में पाई जाती है। इसी प्रकार आल्पस पर्वत स्पेन के मसीटा मरुस्थल, प्रीपेड दलदल, काकेशस पहाड़ी क्षेत्र और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती भाग में जनसंख्या वितरण बहुत कम पाया जाता है। सबसे उत्तर में स्थित टुंड्रा प्रदेश लगभग जनरिक्त है और केवल समुद्र तटीय भागों में यत्र तत्र आदिम जातियों के कुछ समूह पाए जाते हैं।